हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 45 एंड 46। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतं अद्यैव मे विशतो मानस राजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त, स्मरतव्यो सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चेत्। सर्वे विद्धि निषेधाशु एतयो एव किंकर, आराध्यो भगवान् व्रजेशतनाय, तद्धाम वृंदावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गेनया कल्पिता, श्रीमत् भागवतं प्रमाणममालं, प्रेम पुमर्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं, तत्ताद्रहो न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटीशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृत्युमेतदेव, गोविंद धामो धर्मादवेसि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकीम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अध्याय 15 जिसका शीर्षक है पांडवों का सामयिक प्रस्थान, श्लोक नंबर 45। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, सर्वे तम मनु निर्जग्मो भ्रातरः कृत निश्चया करिणा धर्म मित्रेण दृष्ट्वा पृष्टा प्रजा भुवि सर्वे तं मनु निर्जग्मो भ्रातरः कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि सर्वे तं मनु निर्जग्मो भ्रातरः कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। शब्दार्थ, सर्वे तम अनुनिर्जग्मु। सर्वे मतलब सारे, तम यानी उसको, अनुनिर्जग्मु यानी पीछे करते हुए घर छोड़ दिया। भ्रातरः यानी भाइयों ने कृत निश्चय, निश्चय पूरा निश्चित रूप से। क्यों? कलिना यानी कलयुग, कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग आ गया था और उसके कारण अधर्म मित्रेण, सब कोई अधर्म के साथ प्रभावित हो रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे। दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा, दृष्ट्वा मतलब देखा, स्पृष्टा मतलब सब प्रभावित हो रहे हैं, वशीभूत हो रहे हैं। कौन? प्रजा, जो सारे नागरिक थे प्रजा के, वो भूवि यानी इस पृथ्वी पर। अनुवाद देखिए, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के सारे नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण कमलों का, सॉरी चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञाकारी अनुयायी थे और जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त था। अतः उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने में अपने को बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। सनातन धर्म के अनुसार आदि आयु बीत जाने पर ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के में प्रवृत्त होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। कभी कभी अवकाश प्राप्त लोग मोहग्रस्त हो उठते हैं और जीवन के अंतिम दिनों में अपने को किस तरह लगाए रखा जाए, यहाँ पांडव जैसे अधिकारियों का वर्णन दिया हुआ है। उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि अनेक लोग सोचते हैं। इनका अभ्यास तो वे करते हैं जिन्हें जीवन के चरम लक्ष्य की
कोई सूचना नहीं होती है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता 18.64 जीवन के चरम उद्देश्य को सूचित किया है और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरु तु वाचालम् पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 15 जिसका शीर्षक है पांडवों का सामयिक प्रस्थान। हमने देखा कि जब अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को भगवान की इस भौतिक जगत से पधार जाने का के विषय में बताया तो युधिष्ठिर महाराज के दिल में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने सोचा कि वह जगह जहाँ भगवान नहीं है वहां पर रहकर क्या फायदा। तो उन्होंने ग्रह त्याग करने का, संन्यास लेने का निश्चय किया। उससे पहले उन्होंने परीक्षित महाराज को राज्य दिया। परीक्षित महाराज उनके पौत्र थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। यहाँ पर यह एक प्रश्न उठता है कि युधिष्ठिर महाराज ने अपने छोटे भाइयों में से किसी को राज्य क्यों नहीं दिया, वो तो सब थे। वो इसका उत्तर ये है कि वो ऐसा चाहते थे कि क्योंकि अब आधी उम्र बीत गई है, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि एक व्यक्ति को सनातन धर्म के अनुयायी जो हैं, उनको आधी आयु बीतने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए। वास्तव में गृहस्थ जीवन में रहकर आनंद भोग करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जिस तरह के आज का जीव सोचता है कि गृहस्थ जीवन में कैसे आनंद और सुख से जिया जाए, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जिए क्यों? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीने का अर्थ है तत्व जिज्ञासा करना। और जब जीव ग्रस्त जीवन में होता है तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी सारी आसक्तियां होती हैं जिसके कारण हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर दौड़ नहीं पा रहे। तो ऐसा इन सब जो गृहस्थ के जंजीरों को से खुद को मुक्त करना चाहिए। जब समय ऐसा भी तभी युधिष्ठिर महाराज ने सोचा अगर मैं अपने किसी भाई को फंसा दूंगा फिर से राज्य में तो फिर उनका तो उनके जीवन का लक्ष्य तो उनको नहीं मिलेगा। तो मैं उनकी इच्छा ये थी कि वो सब भी विरक्त हो जाएं। अब आधी उम्र बीत गई है, अब राज्य में नहीं फंसे, तो फिर उन्होंने परीक्षित महाराज को राज्य दिया। तो यही बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद शास्त्र में सुत गोस्वामी कहते हैं सर्वे तम अनु जो अनुनिर्जगमो, यानी कि उसके पीछे पीछे वो सारे जो जितने भी भाई थे वो उसके पीछे पीछे। भ्रातरा मतलब भाई और कृत निश्चय, उन्होंने सबनों ने ये निश्चय कर लिया पहले से ही। जब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर महाराज अब इस राज्य को त्याग रहे हैं तो उन्होंने भी ये निश्चय कर लिया कि अब इस राज्य को हमें भी नहीं भोगना है। वास्तव में ये युधिष्ठिर महाराज जो थे वो धर्मराज थे, वो जो भी निर्णय लेते थे उनके सारे भाई हमेशा बगैर किसी आर्ग्यूमेंट्स के वो निर्णय को स्वीकार करते थे। उन्होंने जब जब, हालांकि कभी कभी ऐसा होता था कि वो इस निर्णय से खुश नहीं होते थे मगर स्वीकार करते थे। जैसे जिस समय द्रौपदी को हारा था युधिष्ठिर महाराज ने, कोई किसी को भी ये इच्छा नहीं थी कि द्रौपदी को दांव पर लगाया जाए, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने ये निर्णय लिया कि द्रौपदी को दांव पर लगाया जाएगा तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद जब द्रौपदी आई थी उस समय दुर्योधन ने कहा था कि क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें दांव पे लगा दिया अब तुम मेरे दास हो, तो खबरदार जो कोई उठा। उनमें से एक एक में इतना बल था, भीम के अंदर इतना बल था कि उसी समय दुर्योधन को छीड़ के रख देता। अर्जुन के बाणों में इतना बल था कि वो सारी सभा को नष्ट कर सकता था, परंतु उन्होंने केवल युधिष्ठिर महाराज के आदेश का पालन करने के लिए कि अब क्योंकि हम दास हैं तो फिर हम लोगों को इनके साथ युद्ध नहीं करना है। तो फिर उन्होंने उस समय उस भीषण परिस्थिति में भी युधिष्ठिर महाराज के आदेश का पालन किया। उसके बाद जब दोबारा युद्ध क्रीड़ा हुई और फिर उनको 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास भोगने के लिए भेज दिया गया, तब विदुर जी ने उन्हें कहा कि देखो जब विषम परिस्थिति होती है, कोई स्पेशल परिस्थिति होती है, उसमें क्या होता है, एक दिन को एक वर्ष के समान कहा जाता है। तो 12 दिन के बाद समझो आपके 12 साल कंप्लीट हो गए और एक जो दूसरा दिन एक्स्ट्रा 13वां दिन जो है वो अज्ञातवास का भी कंप्लीट हो गया। अब छोड़ो, जिद मत करो, तुम लोगों ने समझो अपना जो ये हार गए थे और जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जाना पड़ा, इसके कारण अब तुम्हारा ये दंड खत्म हो गया, अभी तुम लोगों का टाइम पूरा हो गया, चलो वापस से हस्तिनापुर। और भीष्म पितामह ने भी ये ना इस बात की सहमति दी, लेकिन वो सब जाना भी चाहते थे, भीम अर्जुन जाना चाहते थे कि अब क्यों, हम राजा हैं, हमारा अधिकार है, हमारे साथ छल किया गया है, फिर भी हम वन वन में भटकते रहे। लेकिन उस समय भी धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं, 12 साल तो उसका मतलब है 12 साल, 30 महीने, 30 दिन का एक महीना और 365 दिन का एक साल, वो वाले 12 साल हम बिताएंगे, उसके बाद जाएंगे हस्तिनापुर। तो उस समय भी वो चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज की इच्छा और उनके आदेश के अनुसार उन्होंने अपना अज्ञातवास भी कम्प्लीट किया और 12 साल, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये जो पांडवों के पांचों भाई थे वो सदैव युधिष्ठिर महाराज का ही अनुसरण करते थे, जैसे वो उनको आदेश देते थे ऐसा ही वो करते थे। और आज भी जब युधिष्ठिर महाराज ने राज्य को त्याग दिया और कृष्ण भक्ति में लग गए, तो वे उन भी भाइयों ने सोचा कि अभी हमें भी यही करना चाहिए। और उसका कारण बताया कि क्यों, क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण, क्योंकि कलयुग जो है वो आ चुका था, और ये कैसा कलयुग है, अधर्म मित्रेण, यहाँ कलयुग में केवल अधर्म का ही बोलबाला है, हर कोई अधर्म करना चाहता है, हर कोई एक दूसरे को लूटना चाहता है, एक दूसरे को चीट करना चाहता है, एक दूसरे के साथ कलह करना चाहता है। पहले तो ऐसा होता था कि दो कंट्रीज में युद्ध होता था, फिर ऐसा हुआ दो सिटीज में युद्ध होता है, फिर क्या हुआ कि दो गांवों में युद्ध होता था, लेकिन आज कलयुग में एक ही घर में, एक घर में एक दो लोग होते हैं वो युद्ध, ये कलह का युद्ध है। तो ऐसे युद्ध, ये जो ऐसा युग है जहाँ पर वास्तव में भक्तों को चाहिए कि जल्दी से इस जगह से निकले, इस कलयुग को लोह युग कहा गया है, लेकिन इसी कलयुग को चैतन्य महाप्रभु ने स्वर्ण युग बना दिया, स्वर्ण युग। और स्वयं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कले दोषी निधि राजन यस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि मानता हूँ कि इस कलयुग में करोड़ों करोड़ों दोष हैं, लेकिन इसके अंदर एक महान गुण भी है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, यदि कृष्ण का कीर्तन किया जाता है, कृष्ण का स्मरण किया जाता है, कृष्ण के नाम को लिया जाता है, तो मुक्त संग परम व्रजेत, मुक्त संग परम व्रजेत, सारे जितने भी अभद्र हैं कलयुग के, जितने भी दोष हैं, उनसे जीव खुद को मुक्त कर सके। तो इस कलयुग में बुद्धिमान कौन है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस कलयुग में, इस युग में बुद्धिमान कौन है, बहुनाम जन्म नामंती ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो मेरी शरण में आता है वो बुद्धिमान है। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले बुद्धिमानता का काम किया और उनके सारे भाइयों ने सोचा कि क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग में हर जगह कला है, हर जगह झगड़ा है, फसाद है, एक दूसरे को चीट किया जाता है और दुख मतलब दुखदायक है। जो भी कार्य आप करते हो कलयुग में, जो भी भौतिक कार्य आप आनंद प्राप्त करने के लिए करते हो, वही कार्य से आपको दुख मिलता है। तो दृष्टा प्रजा भूमि के इस कलयुग में उन्होंने देखा कि सारी प्रजा जो है वो स्पृष्टा प्रभावित हो गई है। इस पृथ्वी पर सब लोग कलयुग से प्रभावित हो गए, इसलिए अब हमें यहाँ से भगवान के श्री चरणों की ओर ध्यान लगाना चाहिए और ये भौतिक आसक्ति को समाप्त कर देना चाहिए, राज्यपाट को भी छोड़ देना चाहिए। तो ये सोचकर उन सबने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अनुशीलन में अपने आप को निवृत्त कर दिया कि अभी हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये सब कार्य तो श्री रूपा जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, जो कि श्रीधर स्वामी ने बताया कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि अनेक लोग सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि इसी भौतिक जगत में रहकर धर्म करना है, धर्म करके क्या करना है, अर्थ प्राप्त करना है, अर्थ प्राप्त करके क्या करना है, अर्थ प्राप्त करके हमें काम इच्छाओं को पूरा करना है। इच्छाओं को पूरा करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, बल्कि कामस्त नेन्द्रिय प्रीति, काम ये नहीं होना चाहिए कि उससे हम अपनी इंद्रिय को प्रीति कराओ, इंद्रिय को सुख दें, इंद्रिय को सुविधाएं, ऐसा नहीं। लाभो जीवे तयावता, कितना काम होना चाहिए जितना कि आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सको। जीना इसलिए नहीं है कि धर्म अर्थ काम में उलझते रहो, जीना इसलिए है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जब तक तत्व जिज्ञासा नहीं होगी तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि साक्षात भगवान ने श्रीमद भगवद गीता 18.64 में जीवन के चरम उद्देश्य को सूचित किया है। क्या बताया श्री भगवान श्री कृष्ण ने 18.64 में, भगवान ने कहा सर्व गुह्यतमं भूय श्रोमे परम वचा। अर्जुन अब तक तो मैंने तुम्हें गुह्य बताया, गुह्यतम बताया, लेकिन अब मैं तुम्हें गुह्यतमम बता रहा हूँ, सर्व गुह्यतमम, सबसे ज्यादा टॉप सीक्रेट बात बता रहा हूँ। और क्यों बता रहा हूँ, बहुत ही सुंदर शब्दों में भगवान कहते हैं इष्टोसी में दृढ़मिति, इष्टोसी में आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, कितना करता हूँ, दृढ़मिति टू मच, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। मैं नहीं चाहता कि तुम बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस दुखों भरी दुनिया में बारंबार आते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ततो वक्ष्यामि ते हितम, हित चाहता हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारा भला चाहता हूँ, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि सर्व गुह्यतमम क्या है, सबसे ज्यादा टॉप सीक्रेट क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तब भगवान बताते हैं 65 में, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन मना भव मत भक्तो, मन मना हृदय में केवल मेरे विषय में सोचो, मनन करना है, ध्यान करना है, याद करना है, स्मरण करना है, तो केवल मुझे याद करो। भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, और मध्याजी मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, यदि तुम साप सहारों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओगे तो क्या होगा। अर्जुन बोलते भगवान फिर बताते मामे वैश्यसी सत्यम ते, मामे वैश्यसी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, वास्तव में मैं वास्तविक सिद्धि हूँ, मैं जीवन का लक्ष्य हूँ, मैं वेदों का लक्ष्य हूँ, मैं ही जीव का एकमात्र शरण स्थल हूँ, तो फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे यदि मुझसे प्यार करोगे, मुझे याद करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मुझे नमस्कार करोगे। और मामे वैश्यसी सत्यम ते, सत्य कह रहा हूँ, भगवान को कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं सत्य कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे एक प्रीतम अपनी प्रेमिका को प्रेम का इजहार करते हुए बहुत ही हृदय से बात, मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्यों करता कहता हूँ प्रति जाने कह दिया, बोलता हूँ प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ भाई बताओ, इतना ज्यादा क्यों आप उतावले हो रहे हो? तब भगवान फिर विवश होके कहते हैं, प्रियो से मैं क्या करूं, मजबूर हूँ, प्यार करता हूँ। प्रियो से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम पुनः अपने वास्तविक आनंदमय जीवन को प्राप्त करो। तुम्हारा स्वरूप है सच्चिद आनंद, तो तुम सच्चिद आनंदमय जीवन को प्राप्त करो। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि जीवन का लक्ष्य मैं हूँ। और यह लक्ष्य यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में 18.64 में जीवन के चरम उद्देश्य को सूचित किया और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की। यानी बुद्धिमानी किया है कि आपने यहाँ मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो इस मनुष्य जन्म के द्वारा क्या ऐसा करें कि कृष्ण प्राप्ति हो जाए, कृष्ण के अंदर आकर्षण उत्पन्न हो जाए, भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाए, उसके लिए जीना है। ये हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा भौतिक आसक्ति को बढ़ा रहे हैं। किसी भी तरह से भगवान की चरणों में आसक्ति उत्पन्न हो जाए, वही जीवन की सिद्धि है, वही जीवन की परफेक्शन है। और ये कोई कठिन भी नहीं है, आज इस दौर में एकदम सरल उपाय है। भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की कथाओं को स्मरण करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है। इससे क्या होगा, हम भले ही पांडवों की तरह नहीं कर सकते, पांडव वो समय अलग था। जो आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यंतिकमात्मनः मनसा धारयामासुर वैकुंठ चरणाम्बुजम्। ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यंतिकमात्मनः मनसा धारयामासुर वैकुंठ चरणाम्बुजम्। ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यंतिकमात्मनः मनसा धारयामासुर वैकुंठ चरणाम्बुजम्। ते साधुकृत सर्वार्थ, ते मन वे सब साधुकृत, साधु के अनुरूप किया गया कार्य, सर्वार्थ प्रत्येक योग्य वस्तु से युक्त, और ज्ञात्वा, ज्ञात्वा मतलब जानकर, आत्यंतिकम यानी चरम, आत्मना यानी जीव का, वो जानते थे कि जीव का आत्यंतिक यानी चरम लक्ष्य क्या है। और मनसा धारयामासु, मनसा मतलब मन के भीतर से, धारयामासु मतलब पालन किया, क्या चीज, वैकुंठ चरणाम्बुजम, वैकुंठ यानी वैकुंठ के स्वामी, चरणाम्बुजम यानी चरण कमल का अनुवाद। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरण कमलों का ध्यान किया। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता 7.28 भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में सुकृत किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने को एकाग्र कर सकते हैं। पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी पुण्य कर्म किए थे, इसीलिए पाप कर्मों के फलों से मुक्त थे। अतः यह उचित ही है कि उन्होंने अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित किया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष नियमों को वे ही स्वीकार करते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं होते। ऐसे लोग उपर्युक्त चारों नियमों के कलमश से प्रभावित होने से के कारण तुरंत ही वैकुंठ लोक में भगवान के चरण कमलों को स्वीकार नहीं करते। वैकुंठ लोक भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश दुर्गा देवी या भगवान की माया के अधीन है, किंतु वैकुंठ लोक की व्यवस्था भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं, ते साधु कृत सर्वार्था। ते मतलब वो जो पांडव थे, सारे जो युधिष्ठिर के अनुयायी बन रहे थे, उनके पद चिन्हों के अनुसार अब वो भी अपने राज्य को त्याग कर भगवान के चरणों की ओर जा रहे थे। वो उन्होंने पहले से ही साधु कृत सर्वार्था, सारे प्रतीक जो कार्य उन्होंने साधुओं के होते हैं, जो वास्तव अपना धर्म था, मतलब उन्होंने धर्म सारा अपना निभा लिया था, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, राज्य का धर्म, वो सारे धर्म का पालन कर लिया था। ऐसा नहीं है कि वो अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के लिए संन्यास ले रहे थे, नहीं, उन्होंने अपना सारा, जब अर्जुन पहले भगवान को कह रहे थे कि अब मैं, यह मुझे राज्य नहीं चाहिए और मैं भिक्षा अटन करके अपने जीवन को पालन करूंगा, तब भगवान ने उन्हें मना किया था कि नहीं अर्जुन, धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन आज सुत गोस्वामी कहते हैं, ते साधु कृत सर्वार्था, उन्होंने अपने सारे धर्म को संपन्न कर लिया था और ज्ञात्वा, अब उन्हें पता चल गया था, क्या आत्यंतिकम आत्मना, जीव का वास्तविक लक्ष्य क्या है। अब वो जानते थे कि हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं तो हमें क्या करना है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी 7.28 का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिसमें भगवान ने कहा, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, जिनके जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में पुण्य कार्य किए हैं और जिनके पाप कर्मों का संपूर्ण विनाश हो गया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़व्रता, सिर्फ वही ही दृढ़व्रत के साथ मुझे मेरा भजन कर सकते हैं। तो ये जो पांडव थे, उन्होंने सारे कार्य संपन्न किए थे, उन्होंने उनके समस्त अपराध समाप्त हो गए थे, केवल पुण्य कर्मों का जिन्होंने पुण्य कर्म किए और पाप कर्म समाप्त हो गए, केवल वही मेरी एकाग्र चित्त से भक्ति कर सकता है। तो पांडवों ने ना केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्म में भी पुण्य कर्म किए थे, इसी पाप कर्मों के फल से मुक्त थे, अतः यह उचित ही है कि उन्होंने अपना ध्यान कहाँ पर लगाया, मनसा धारयामासुर, मन से, और धारया मतलब उनसे मन से पालन किया, मन लगाया कहाँ पर, वैकुंठ चरणाम्बुजम, वह भगवान जो वैकुंठ के स्वामी है उनके चरण कमलों में। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने वैकुंठ और कुंठ में बहुत ही सुंदर अंतर बताया है। भगवान श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, वैकुंठ लोक जो है वो इस भौतिक जगत से बहुत दूर है, और जो वैकुंठ है उसमें भगवान के चरण कमलों की सेवा का अवसर प्राप्त होता है, और वैकुंठ जो है उसके अंदर कोई भी क्लेश नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है, वहां पर जीव जाने के बाद संपूर्ण आनंद प्राप्त करता है। लेकिन ये जो भौतिक जगत है उसको कहा जाता है कुंठा। तो ये भौतिक आकाश दुर्गा देवी या भगवान की माया शक्ति के अधीन है, वो जो वैकुंठ है वो माया से बिल्कुल परे है, और ये जो भौतिक जगत है वो माया के अधीन है, किंतु वैकुंठ लोक की व्यवस्था भगवान की निजी शक्ति के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर ये वास्तव में ये जो कुंठ जगत है उसकी भी व्यवस्था तो भगवान श्री कृष्ण की ही निजी शक्ति के द्वारा की जाती है। भगवान स्वयं कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर, ये जो प्रकृति है वो मेरे इशारे पर चलती है। तो भी इस प्रकृति के अंदर भगवान ने दुर्गा को जेलर बना के भेजा है। ये जो दुर्गा है, यहाँ पर जैसे माया शक्ति दुर्गा, वो जेलर है, क्योंकि वैकुंठ लोक में वही जा सकते हैं जो भगवान के श्री चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, सिर्फ वही जा सकते हैं जो भगवान की भक्त होते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। और इस कुंठ जगत में किसको भेजा जाता है? जो जीव आत्मा भगवान के आदेश का दुरुपयोग करती है, भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और स्वयं आनंद लेना चाहती है और समझती है कि मुझे विष्णु। वास्तव में इस भौतिक जगत में देखो, वैकुंठ में और भौतिक जगत में अंतर क्या है? वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान है और विष्णु भगवान क्या करते हैं, सब लोग दूसरे जो हैं वो उनकी सेवा करते हैं, ठीक है। लेकिन जो भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करते वो क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं और इस कुंठ जगत में अपना एक वैकुंठ बनाना चाहते हैं। उसमें भी क्या होता है, स्वयं उनकी एक लक्ष्मी होती है जो उनकी सेवा करे, बाकी उनके पुत्र इत्यादि होते हैं वो भी उनकी आज्ञा का पालन करें और स्वयं वो विष्णु की तरह भोग करना चाहते हैं, छोटे छोटे सब विष्णु बनना चाहते हैं, वो आनंद उठाना चाहते हैं इस कुंठ जगत में। लेकिन वास्तविक बुद्धिमान क्या है, वो है जो ये जान सके कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये जैसे उन्होंने कहा, ज्ञात्वा त्यांतिकम आत्मना, जीव का वास्तविक लक्ष्य क्या है कि वो वैकुंठ चरणम्बुजम, वैकुंठ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की चरणों को स्वीकार करें। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि जो भौतिक जगत में धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष नियमों को वही स्वीकार करते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं होते हैं। फिर क्योंकि भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा में अपने मन को लगाने के लिए आवश्यक यही है कि आपके समस्त कर्मों को, पाप कर्म जो है वो समाप्त होने चाहिए। तो जिनके पाप कर्म अभी तक समाप्त नहीं होते हैं तो वही धर्म अर्थ काम मोक्ष में ही फंसे होते हैं। ये मोक्ष वो वाला है जो सायुज्य मुक्ति जिसको प्राप्त होती है। ये पहले धर्म करते हैं, धर्म करने के बाद अर्थ कमाना चाहते हैं और फिर इंद्र तृप्ति करने के लिए, या तो वो इस भौतिक जगत में ही इंद्र तृप्ति की सामान जुटाते हैं या फिर स्वर्ग में जाते हैं, और फिर उससे भी आगे जब उन्हें पता चल जाता है कि इस भौतिक जगत में या कहीं पर भी, चाहे स्वर्ग में क्यों ना चले जाओ, काम की तृप्ति नहीं होती है, तो वो हताश हो जाते हैं और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो ये केवल वही कर सकते हैं जिनके अपराध पाप कर्मों का जो है ना पुण्य एकत्रित नहीं होते हैं और अभी तक उनके पाप कर्म के फल बाकी रहते हैं। लेकिन जिनके अपराधों के समस्त फल समाप्त हो जाते हैं, भगवान कहते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम निर्दृढ़मिता, मुझे यदि जो भजन करते हैं उनके तो समस्त अपराध समाप्त होने चाहिए। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, तो क्या अपराधी भगवान की शरण में नहीं जा सकते? भगवान ने ये कहीं नहीं कहा कि अपराधी मेरी शरण में आ नहीं सकते। और जैसे ही कोई, भगवान कहते हैं कि अपिचे सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भक्त, अगर कोई अपराधी भी सहयोग से किसी शुद्ध आत्मा अपनी इच्छा भक्ति, बाकी सारे जो कर्म हैं, बाकी सारे जो कार्य हैं और जो भी हमें मिलता है इस भाग्य, वो सब हमें भाग्य से मिलता है, लेकिन भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति आपको इच्छा करने से मिलती है। तो आप, हमें यह प्रश्न उठता है कि फिर भक्ति करने की इच्छा कैसे उत्पन्न हो मन में? तो भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न होती है साधु संघ से। जब जैसा हम संघ करेंगे वैसा ही रंग, अभी देखो ये सब पांडवों ने युधिष्ठिर महाराज का संग किया, तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने जैसे भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े, तो इसी तरह से अगर हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा, भक्ति की इच्छा उत्पन्न होगी। और जैसे ही हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न होगी तभी भगवान कहते हैं पीछे सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, फिर भले आप दुराचारी भी हो, अगर आपने भक्ति शुरू कर दी तो क्या होगा, भगवान कहते हैं साधु रेव समन्तव्य, फिर उसे साधु समझना चाहिए, सम्यक व्यवस्थितो ही सा, क्योंकि वो सही जगह पर आ गया। और वहां पर आने के बाद क्या होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम फटाफट वो धर्मात्मा बन जाएगा, शाश्वत शांति निगच्छति, और फिर उसे शाश्वत शांति प्राप्त होगी अर्थात उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। तो चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, चाहे हमारे कितने ही अपराध भरे हुए क्यों न हो, अगर हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे और भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे समस्त कर्मश समाप्त हो जाएंगे और वैकुंठ चरणाम्बुज भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम उत्पन्न होगा और हमारे मन में भगवान का ध्यान और प्रेम उत्पन्न होगा तो हमें अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, जो कि है कृष्ण प्रेम।